हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद करके हमारे पीछे भगवत नाम का उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। कैसे लगा आपको ये एक मिनट का भगवत नाम उच्चारण? क्या महसूस आपका, क्या आपका अनुभव लगता है एक से एक मिनट से? कोई बताए कैसे आपने फील किया? एक एक मिनट, अभी हम एक मिनट भी नहीं हुआ, आप बताइए कैसे लगा?
जैसे भगवान में साक्षात्कार हो रहा,
भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। और कोई सज्जन बताए कैसे आपको महसूस हुआ? और कहीं ध्यान नहीं हुआ एकाग्रता का? एकाग्रता हुई थोड़ी देर के लिए, भगवत साक्षात्कार का हुआ। और कोई सज्जन अपना राय दे, कोई बेटी आप में से कोई बोलो कैसे लगा? आनंद की अनुभूति हुई, बिटिया बोल रही है, बहुत अच्छा। और कोई? मन में शांति मिलती है, बहुत अच्छा। और कोई एक बोलो बेटा। भगवत साक्षात्कार का अनुभव हुआ, मन में शांति हुई, आनंद का अनुभव हुआ, एकाग्रता हुई, ये सब मिलाकर थोड़ी देर के लिए चिंता से मुक्त हो गए और सुख हुआ मिला। आनंद सुख से ऊपर होता है, ये ठीक है कि नहीं है? तो हम सारे दिन सुबह से शाम तक दौड़ भाग काय के लिए करते हैं, शांति और सुख के ना? तो एक मिनट में मिल गया और कहीं और से नहीं मिला, हमारे अंदर में ही था और हमने अभी यहाँ अनुभव किया। इसके लिए कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, शांति भी मिली के आप ही कह रहे हैं, आनंद मिला आप ही कह रहे हैं, सुख मिला, एकाग्रता मिली, तो इतना सरल सा माध्यम एक मिनट के अंदर वो सब प्राप्त हो सकता है जिसके लिए हम पूरी जीवन लगा देते हैं कि शांति और सुख मिलेगा हमको कभी, और जबकि यहाँ बैठ के एक मिनट में हमने अभी अनुभव किया कि आनंद मिल रहा है, तो इस आनंद कहाँ से मिला, क्या करने से मिला? भगवान के नाम उच्चारण करने से मिला। ये आनंद आया कहाँ से? ये आत्मा का आनंद है, शरीर का नहीं है, ये आत्मा का है। जैसे जैसे अभी आधे घंटे के बाद बाहर नाश्ता करेंगे, पराठा, क्या है पराठा? हाँ क्या है, क्या बन रहा है?
इडली सांभर।
इडली सांभर बन रही है, कुछ तो आवाज आ रहा है बाहर से, कुछ बन रहा है लगता है। तो वो जब खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगी, हाँ बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास टेस्टी है। जैसे भोजन करने से शरीर को सुख मिलता है, जवान को टेस्ट मिलती है और संतुष्टि होती है, ऐसे भगवत नाम लेने से आत्मा की तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है और आनंद का अनुभव होता है। तो इसका मतलब हम दो चीजों के बने हुए, एक शरीर है एक आत्मा है। शरीर के लिए तो हम रोज प्रयास कर रहे हैं उसको सुखी करने का, साफ करने का, स्नान करने का, कपड़े वस्त्र पहनाने का, भोजन करने का, ये तो रोज व्यवस्था कर ही रहे हैं। लेकिन आत्मा के चिंतन का हमने थोड़ा सा नागा कर दिया है, उसमें थोड़ी सी कमी लाए हैं, इसके कारण हम सुख और शांति और आनंद से दूर जा रहे हैं। शरीर के ऊपर तो हमारा समय बहुत हम रोज दे रहे हैं, इसलिए वैदिक काल में हमारे समय को तीन भाग में बांटा था, 8 घंटे शरीर के लिए रखे थे। शरीर को सोने के लिए 6-7 घंटे चाहिए, 1 घंटा नहाने धोने के लिए चाहिए, भोजन आदि करने के लिए चाहिए, 8 घंटा शरीर और शरीर से उत्पन्न हुए परिवार को पालने के लिए 8 घंटे का नियम बनाया था वेद शास्त्र ने, कि 8 घंटे नौकरी करनी होती है, धंधा दुकान करना है, उसके लिए भी 8 घंटे हैं, ताकि शरीर और घर और परिवार चलाना है। बाकी भी 8 घंटे हमारे पास हुआ करते थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। वो 8 घंटे आत्मा के चिंतन के लिए हुआ करते थे। पुराने जमाने की पद्धति ये थी, 3 भाग में समय को वितरण किया हुआ था। इसको आधुनिक भाषा में टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। टाइम की मैनेजमेंट प्रॉपर करो, पहली चीज को पहले टाइम दो, दूसरी चीज को दूसरे नंबर पे, तीसरी को तीसरे पे, चौथी को चौथे पे। तो पहली चीज हमारे जीवन में है हमारी आत्मा और हमारा जिंदा रहना। अगर हम जिंदा है तो ये दुनिया हमारे लिए है, नहीं तो दुनिया का हमारे लिए अस्तित्व क्या है? हम ही नहीं तो दुनिया हमारे लिए किस काम की? तो हम तो तब है जब हमारी आत्मा शरीर में है, आत्मा शरीर में नहीं है तो हमारा शरीर तो बेकार है। तो उस आत्मा जिसके सहारे हम जी रहे हैं, जिसके सहारे इस दुनिया के अंदर हमारा सब संबंध बना हुआ है, उसके चिंतन के लिए अगर समय नहीं है तो फिर हमारा जीवन बेकार है। तो मुख्य तो हमारा जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए आत्मा, उसके चिंतन के लिए हमारे को समय निकालना चाहिए, और फिर हमारे को जिंदा भी रहे तो स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अगर स्वस्थ है, ठीक है तबीयत और हमारा तंदुरुस्ती ठीक है, स्वस्थ ठीक है, तो किसी काम के नहीं, तो रोगी है तो अपने लिए परेशानी और परिवार के लिए भी परेशानी। तो शरीर के लिए भी तो कुछ समय निकालना चाहिए ना। तो 1 घंटा रोज को चलने के लिए अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए ना, कुछ शरीर को। ये तो योग शास्त्र, ये शास्त्रों के अंदर है कि प्राणायाम करना है, लेकिन कितने लोग हैं इसके लिए भी समय नहीं निकाल पाते। पहले तो प्रायः किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, 1-2 किलोमीटर आदमी जंगल में जाता ही जाता था, सुबह नेचुरल वॉक हुआ करती थी, वो सब तो गांव में तो नेचुरल ही हुआ करता था, वो भी समाप्त हो गया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारा अपना परिवार है, जिसके लिए कमा रहे हैं। किसी पूछने किस लिए कमा रहे हैं, बोला परिवार के लिए कमा रहे, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, और उनके लिए टाइम नहीं है, उनके साथ बैठने बात करने के लिए भी टाइम नहीं, उनसे तो हम इतने परेशान हैं कि उसको ट्यूशन में भेजते हैं, घर में होगा तो हमारा सर खाएगा, जाओ जाओ ट्यूशन पे जाओ। फिर पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, हमारी जान छोड़े इसलिए भेजते, हमारे पास टाइम नहीं है उसको देखभाल करने का। ये 3 हमारी प्रायोरिटी जिन टाइमों की थी, आत्मचिंतन, शरीर को निरोगी रखना और परिवार को संगठित प्रेम में रखना, ये 3 टाइम हमने कहां लगाए? 4th चीज के ऊपर, पैसा कमाने के लिए, वो 4th नंबर पे है। उसका नंबर 4 है, हमने उसको नंबर पहला दे दिया तो बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन आत्मा के चिंतन छोड़ने से शांति चली गई। शरीर का को निग्लेक्ट करने से रोग के घर बने हुए, आधार है रोग के, रोज नई अस्पताल बन रही है। आप आज से 50 साल पहले सीकर में कितने अस्पताल थे? कोई पुराना आदमी बताए, एक। और अब कितनी है? तो इसका मतलब रोग बढ़ा है ना, कम तो नहीं हुआ ना। तो ये प्रमाण है कि रोग बढ़ा है। हम सुधर गए हैं, हमने बहुत एडवांस हुए हैं, तो रोग कम होना चाहिए ना। डॉक्टर बहुत हो गए तो बीमार कम होने चाहिए ना, बीमार तो उससे ज्यादा हो रहे। और परिवार बहुत कम संगठित है, प्रेम से साथ रहने और साथ खाने वाले परिवार समाप्त हो गए। बच्चे कहना नहीं मानते हैं और परिवारों में प्रेम नहीं है। कारण क्या है? माने हम उनको समय देना बंद कर दिया। तो ये तीन चीजों का हमने अतिक्रमण किया है, आत्मा का, स्वस्थ का और परिवार का। केवल धन के ऊपर सारा हमने अपनी बल लगा दिया है उसको प्राप्त करने के लिए। और आश्चर्य ये है कि जवानी सारी धन कमाने में लगा दी और धन आने के बाद फिर जवान होने का प्रयास करते हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। भगवान बता रहा था एक भक्त को कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जवानी में आदमी धन कमाने के पीछे लगता है और जब धन आ जाता है तो फिर जवान होने का प्रयास करता है। बहुत बड़ा खर्चा करता है जवान होने के लिए, बड़ा प्रयास करता है। क्या क्या नहीं करता है कि जवान हो जाऊं, कैसे भी बाल काले करने से हो जाऊं, कि नए दांत लगाने से हो जाऊं, कि च्यवनप्राश खाने से हो जाऊं। लेकिन पैसा भी जाता है और जवानी भी जाती है, दोनों हाथ से जाते हैं, कुछ भी हाथ नहीं आता। जवानी चली गई पैसे के पीछे, घर छोड़ के चले गए, घर वालों को भी नहीं देखा, कई साल गुजर गए और जब पैसा लाए तब जवानी चली गई। तो न सुख जवानी का लिया न पैसे का लिया, दोनों चीजें बेकार चली गई दुनिया में। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है संसार का। तो संगठित जीवन, सुबह उठ के पहले भगवान के नाम के स्मरण में बैठना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको निग्लेक्ट करने वाला आदमी मूर्ख में शुमार किया जाता है। मूर्ख है जो अपना हित नहीं जानता है, तो पागल कहेंगे जो अपना भला नहीं चाहता है। तो ये पागलपन हमको कहां से आई? आदमी पागल कैसे हो गया? भाई नशा पीता है आदमी पागल होता है ना, नशे वाला आदमी पागल होता है। प्राय कहते हैं ये पागल है, सारा दिन नशा पीता है। हमारे को भी आज बहुत बड़ा एक मद चढ़ा हुआ है, नशा है जिसने हमको पागल कर दिया है। और ये है धन का मद है इस दुनिया में आजकल सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा नशा है। इसने हमको ऐसा पागल कर दिया कि हमको हमारा हित क्या है इसका भी पता नहीं है, अपने हित का भी पता नहीं है। अपने धन किसके लिए कमाते? परिवार के लिए ना। आपको तो सबको मालूम है कि भगवान न करे किसी को कोई घर में बीमार हो जाए तो सारा धन तो लगा ही देते हैं उसके ऊपर, उसको ठीक करने के लिए। 5 लाख के 25 लाख खर्च हो जाए तो हो जाए, तो उसी के लिए कर रहे हैं ना। तो उस जिसके लिए कर रहे हैं उसका ध्यान पहले क्यों नहीं करते? तो पहले जीवन में सुबह उठ के भगवान का, जैसे अभी पुष्पांग कह रहे थे आपसे कि पहले भगवान का नाम लेने का निश्चित से टाइम। आज सुबह हम देखा ललित भाई बैठ के अंदर भगवान की आरती करके कीर्तन कर रहे थे। अच्छा लगा, ये तो नियम होना चाहिए कि घर में भगवान का कीर्तन होना चाहिए, ये तो आवश्यक है। इसका टाइम कौन खा गया पता है? जहां मंदिर हुआ करता था, जिसके पास बैठ के हम कीर्तन करते थे, उसकी जगह पे सबसे प्रामिनेंट जगह में हमने टीवी रखी हुई है और ये हमारा टाइम सबसे ज्यादा खा रही। जो संगठित परिवार बैठ के भगवान का नाम लेते थे बैठ के, उस जगह पे टीवी को रख दिया है बहुत प्रामिनेंट जगह पे, और सब बैठ के उधर कीर्तन के बजाय पराई परेशानी अपने सर में डालते हैं। उसको उसने लूट लिया, उसको आग लगा दी, दुनिया जल रही है और हम मुफ्त में घर में बैठे हुए परेशान हो रहे। सीरियल देखने में समय हमारा समाप्त होता है। सीरियल में हीरोइन को तकलीफ होती है, हमारे आंखों से आंसू बहते हैं, अरे जुलम हो गया उससे। वो पैसे कमा रही है उधर एक्टिंग करके और हम घर में मुफ्त में बैठ के उसके लिए रो रहे हैं। ये पागलपन है कि नहीं है? ये सच है कि झूठ है? रोना, हमारे आंखों में आंसू आते हैं उसके हाल को देखकर, और वो पैसा कमा रही है उस एक्टिंग करने का और हम सचमुच के रो रहे हैं। झूठ है कि ये आश्चर्य नहीं लगता इसको बात के ऊपर कि हम दूसरे के लिए रो रहे हैं जो कुछ बैठा है, और हम रो रहे हैं घर में मुफ्त में बैठकर। कितना बड़ा आश्चर्य है कि पागलपन जैसा दौरा हो गया। अरे भगवान के लिए 2 मिनट आंखों में कभी आंसू आए हैं कि कब से उससे बिछड़े हैं जिसने हमको क्या नहीं दिया है? ये सुंदर काया दी है, सुंदर परिवार दिया है, सुंदर शरीर दिया है, इतनी सारी व्यवस्था जिसने करके रखी है, मुफ्त में सबके लिए सांस लेने के लिए हवा का प्रबंध करके रखा है, एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। सबसे ज्यादा कमोडिटी अगर दुनिया के अंदर है तो हवा है सांस लेने के लिए। ये दो मिनट में नहीं लगे मिले तो आदमी मर जाएगा, लेकिन मुफ्त में सबको दिया है, चोर को भी दिया है, बेईमान को भी दिया है, और मुफ्त में सबको दिया हुआ है, और ले रहे हैं, खा रहे हैं दिन में 24,000 बार सांस लेके, लेकिन एक बार भी हाथ जोड़ के ये नहीं कहते भगवान आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे लिए की। इतना तो कम से कम कृतज्ञ होना चाहिए कि कितनी बड़ी कृपा की है भगवान आपने हमारे लिए, इतनी बड़ी व्यवस्था की है। हम तो इतने अधम है कि हम अपने सुंदर से वातावरण को सुमीर जो हवा दी थी उसको भी हमने काला कर दिया है। इतना फैक्ट्रियों के अंदर से धुआं निकालते हैं और कार का एग्जास्ट से बहुत सुंदर दवा हवा का इतना हमने दुरुपयोग किया है, तो अच्छा है आप सीकर के अंदर तो इतना ज्यादा वातावरण का पॉल्यूशन नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है ऐसे, तो फिर हवा यहाँ तो साफ मिलती है आपको, लेकिन दिल्ली के अंदर जाके कभी सांस लेके देखो तो कितनी परेशानी होती है। कभी घूमे दिल्ली में, घूमने के बाद कभी घर आके मुंह धोया, साफ किया, सफेद रुमाल से कभी मुंह साफ करके देखा है तो कैसा होता है रुमाल काला, कैसे क्यों होता है, कहाँ से काला से उतरती है, कहाँ से गाड़ियों से कहाँ जाती है, हमने कहाँ से उतारी, सब रूमाल से धोया तो किसका चेहरा काला किया, अपना किया, किसने किया, हमने किया हमने अपना ही चेहरा काला किया, किसी और का नहीं किया। इसको सभ्य भाषा में चेहरा काला कहते हैं, वैसे काला मुंह बोलते हैं, अपना ही काला मुंह किया है, ये हम ही कर रहे हैं। जरा ध्यान देने का है कि कितना हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा महत्वपूर्ण समय है, इतना समय कीमती है, इतना समय कीमती है, एक मिनट के लिए भी पूरी जिंदगी की दौलत लगाओ तो एक मिनट नहीं मिल सकता। ये तो सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो विश्व विजयी है, वो जब भारत के अंदर आया था और बीमार हो गया था, मच्छरों ने काटा था, मलेरिया हुआ था, मरने के नजदीक आया तो अपने सेनापति को कहा एक महीना तेरे जीवन का मेरे को दे दो, मैं पूरा आधा राज तेरे को देता हूं, मैं विश्व विजयी हूं, मेरे को वापस अपने यूनान जाना है, मैं अपनी मां को मिलना चाहता हूं। सेनापति ने कहा महाराज एक महीना में जीवन का आपको कैसे दे सकता हूं, संभव नहीं है। बोला एक महीना नहीं दे सकते हो तो एक दिन दे दो, मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं आपको सारा राज देता हूं, मेरा पूरी दुनिया मैंने आज जीती है, तुमको दे देता हूं। सेनापति कहे महाराज एक दिन भी मेरे जीवन का आपको दूं, ये तो संभव नहीं है। तब सिकंदर ने कहा देखो जो जीवन लगा के पूरी दुनिया को मैंने कमाया था, उस पूरी दुनिया को आज दांव पे लगा रहा हूं, एक दिन के लिए नहीं मिल रही। जीवन लगा के दुनिया कमाई थी उसके बदले में पूरी दुनिया दे रहा हूं, एक दिन चाहिए नहीं मिल रहा। इसलिए दुनिया वालों, सिकंदर ने कहा था जब मुझे कब्र में डालो तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, दुनिया को कहना सिकंदर दुनिया से खाली हाथ गया, कुछ साथ नहीं ले गया। ये सिकंदर की बहुत बड़ी शिक्षा अभी तक भी है कि विश्व विजयी सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ गया था, कुछ साथ नहीं ले गया था। एक समय का एक मिनट हमारा इतना कीमती है, इतना कीमती है, कुछ भी देके उसको प्राप्त नहीं किया जाता। हाँ बहुमूल्य समय है, हीरे जैसा ये समय है और कोड़ी के बदले जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण समय है, कैसे जा रहा है आप देखिए। आपके 8 घंटे रोज के कहां जाते हैं, घर का काम भी 8 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा, दुकान मकान भी 8 घंटे के अंदर, सब नौकरी भी 8 घंटे में होती है, सोने के साथ 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते, तो बाकी टाइम जाता कहां है। जो चीज हमारे आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के आनंद के लिए थी, वो समय कहां जा रहा है, कहां बेकार में जा रहा है, उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा हमको। अगर हम अगर सावधान नहीं हुए तो ये समय हमारा व्यर्थ में जा रहा है, बहुत व्यर्थ में जा रहा है समय। इसलिए निश्चित रूप से हमारे को आत्मा के चिंतन के लिए कुछ समय रोज भगवत नाम उच्चारण के लिए, जिसे कहा कि सत्ययुग में ध्यान हुआ था, अब ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान संभव नहीं है, ध्यान के लिए एकांत चाहिए, एकांत कहां हो सकती है, संभव नहीं है एकांत के लिए। पुराने जमाने में लोगों की आयु बहुत बड़ी होती थी, राजपाट करने के बाद वन में चले जाते थे और तब एकांत मिलती थी उनको ऋषियों के आश्रम में। अब हम कहीं जा नहीं सकते, हमको इस घर के अंदर जीना मरना है, इसलिए ध्यान करना संभव नहीं है। और वैसे भी भगवद गीता के छठे अध्याय का नाम ही ध्यान योग है। और अर्जुन ने कह दिया भगवान ऐसे मन को एकाग्र करना इतना मुश्किल है जितना तूफान और वायु को रोकना तो मुश्किल है। कोई तूफान को नहीं रोक सकता है, ऐसे मन को भी शांत नहीं किया जा सकता, एकाग्र नहीं किया जा सकता। मैं नहीं कर सकता। अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र था, सामने खड़ा हुआ भगवद गीता सुन रहा था, वो कह रहा है मेरे ध्यान नहीं हुआ, हो सकता है। और ये द्वापर युग की बात है, और कल युग में हम कहते हैं कि हम ध्यान करेंगे, ये संभव नहीं है। यज्ञ करना त्रेता युग का धर्म था। ये धर्म ऐसे युग को ऐसे समझे कि करंसी, ये आज से 15 साल पहले 1000 का नोट दूसरा था भारत का। अब वो भारत का 1000 का नोट आपके घर में होगा तो उसका कुछ भी नहीं मिला, चने भी नहीं मिलेंगे रुपये के। था तो नोट इसी देश का था, उसके ऊपर लिखा है भारत सरकार, लेकिन आज काम नहीं आएगा। तो त्रेता में जो रास्ता था भगवत प्राप्ति का, वो अभी काम नहीं आएगा, वो करंसी खत्म हो गई। अब यज्ञ करने का प्रयास भी करो तो न वो ब्राह्मण है जो यज्ञ कर पाएंगे, मंत्र से अग्नि को उत्पन्न करके वो ब्राह्मण नहीं रह गए। ये तो महाराज माचिस निकालेगा यज्ञ के लिए, उसके साथ सिगरेट और गुटखा भी बाहर निकलेगा, तो वो यज्ञ कहां से हमको शांति देगा। और दक्षिणा नहीं मिली यज्ञ में तो महाराज ही अशांत हो जाएगा, तो फिर शांति दुनिया को कहां है? विश्व शांति का यज्ञ महाराज स्वयं अशांत है, तो कहां से शांति मिलेगी बताओ ना। शुद्ध गाय का घी चाहिए यज्ञ के लिए। अब गाय ही नहीं है, कुत्ते पाले लोगों ने घर में, गाय तो चली गई, कुत्ते घरों में पल रहे। बॉम्बे के अंदर गाय नहीं रख सकते, म्युनिसिपैलिटी का रूल है, बॉम्बे में कोई घर में गाय नहीं रख सकते, लेकिन घर में दो दो कुत्ते रखो तो किसी को मना नहीं। तो ये पहले गाय होती थी ना तो गोपाल याद आता था, तो आदमी गार्ड कॉन्शियस होता था। गाय होगी तो गार्ड कॉन्शियस होगा, कुत्ता होगा तो डॉग कॉन्शियस होगा। अभी सारे कुत्ते कॉन्शियस है लोग, कुत्ता सब पाल रहे हैं, गाय नहीं रख सकते। देखो ना कितनी कितना हमारी संस्कृति का हास हुआ है। पहले गृहस्थ का घर का मतलब दरवाजे के ऊपर सुबह गाय आती थी, उठाती थी, अपने आप उठना पड़ता था। वो अपना इसीलिए गोपाल भगवान का यहां नाम लिखा है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। वो गोपाल है, गऊ का पालन करने वाला है, और एक एक गऊ भी नहीं, असंख्य गायों गायों का पालन करते थे। और बांसुरी बजाने से गाय एक एक गाय का नाम लेके बुलाते थे, एक एक गाय का नाम लेके बुलाते थे। गाय भागती हुई प्रेम से गोपाल के पास आती थी। हमने तो माला रखी है कृष्ण के नाम, गोपाल के नाम जपने की। गोपाल के पास माला थी गायों के नाम जपने। कृष्ण के पास एक माला हुआ करती थी, उसमें अलग अलग हीरे मोती होते थे। हर एक गायों के जो झुंड होता था उसका एक पूरा मन का नीचे कर, गोरी गाय आ गई नहीं आई, अच्छा गोरी नहीं आई बांसुरी में गोरी को बुलाते थे तो गोरी भागती हुई आती थी। तो भगवान गौपाल था और हम कुत्तापाल हो गए हैं। क्या हमारी सृष्टि हमारी संस्कृति कितनी हास होती जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को ठीक तरह से ढालते हैं, ये हमारे हाथ में है। मिट्टी वही होती है, लेकिन कुम्हार जब उसका मटका बनाते हैं तो ठंडा पानी पीते हैं, और जब मटका बनता है कुम्हार से तो उसको शेप देता है, और शेप देने के लिए उसको घूमना पड़ता है ऐसे चक्कर के ऊपर, और ऊपर से खटखट मारना पड़ता है, लेकिन अंदर में एक प्रेम का हाथ भी लगता है जिससे उसको शेप देते हैं। वही मिट्टी है, किसी काम की नहीं है, लेकिन वही मटका बन जाता है और कलश पूजन में रखते हैं तो उसमें सारे देवताओं का आह्वान हो जाता है, वो घर में ठंडा पानी पीने के काम आ जाता है। वही मार्बल है बाथरूम में लगा हुआ है, लेकिन उसकी जब सुंदर मूर्ति बनती है तो मंदिर में पूजा होती है। जब शेप देते हैं तब तो हमको अपने जीवन को शेप देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हम अपने जीवन को कोई शेप दें कि ऐसे राख की तरह राख छोड़ दें? वैसे भी तो मुट्ठी भर राख हमारी वैल्यू है, मरने के बाद घर में हमारा लाते क्या है, एक मुट्ठी भर राख ही तो वापस लाते हैं, 2-4 हड्डियां उसमें होती है, बस हो गया। हमारा अस्तित्व इतना ही है कि मुट्ठी भर खाक से ज्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस संसार में। आखिर में इतना वो भी मिट्टी के मटके में ले जाके गंगा में प्रवाह करके आएंगे, घर में भी कोई वापस नहीं लाता। दादा बाबा की हड्डियां जिसने घर परिवार बनाया था, जिसका मकान दुकान था, उसकी हड्डियां वापस घर में नहीं आती, शमशान में मंदिर में जाती है। कभी ये सत्य है, इसके ऊपर ध्यान कर देख के समझना चाहिए कि वो भी हड्डियां घर में आना हमारे लिए बड़ा, हम उसको क्या मानते हैं, ये अपशुकन है और निषेध है शास्त्र में। और मरे हुए बकरे और मुर्गे की हड्डी फ्रिज में रखते हैं, ये शुकन है क्या? देखो ना संस्कृति का सत्यानाश। बाप की हड्डियां नहीं रखेंगे जिसने फ्रिज लेके दी थी, और उस फ्रिज में के अंदर बकरे की हड्डियां रखेंगे, ये कितना देखो तो कितनी उल्टी संस्कृति चल रही है, इसकी क्या आवश्यकता भी नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है सब ऐसा, इसके ऊपर कभी बैठ के हमको ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, आना चाहिए, कोई शेप हमारी दिशा देनी चाहिए जीवन को, दिशा ही नहीं है जीवन को, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। और दिशा देने वाले जो थे उनको तो हमने उनका तिरस्कार करके उनको हमने हटा दिया अपने स्थान से। दिशा कौन देता था, गुरुजन दिशा दिया करते थे, साधु दिशा दिया देते। कल आए थे हमारे जो आप रात मिले थे उनसे, सनक ऋषि जो आई, वो बाद में हमसे पूछ रहे थे कि हम 50-65 साल हो गए, 50 साल पहले हम देखते हैं कि इतने ज्यादा कथाएं कीर्तन नहीं हुआ करते थे, लेकिन लोगों में संस्कार अच्छे थे। अब कथा कीर्तन में लाखों लोग आते हैं लेकिन लोगों के संस्कार उससे ज्यादा बिगड़ रहे, कारण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कथा कीर्तन मंदिर बहुत बड़े बन रहे हैं लेकिन लोगों के चरित्र में क्यों नहीं परिवर्तन आ रहा है? लोगों के चरित्र में परिवर्तन नहीं आ रहा है लेकिन धर्म का नाम में तो बहुत चारों ओर से डंके बज रहे हैं, आज यहाँ कथा है, आज वहां प्रवचन है। वही मेरे प्रश्न का उत्तर वही वापस आएगा कि 25 लाख रुपया दे के जो डॉक्टर बनेगा वो काय के लिए आपकी सेवा करेगा, तो जो 50 लाख रुपया लेके कथा करेगा वो आपका चरित्र क्यों सुधारेगा? सीधी सी बात है ना। तो ये तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइज हो गया है धर्म के नाम में, इसलिए लोगों का चरित्र ठीक नहीं रहा, क्योंकि ये धर्म है ही नहीं, धर्म के नाम में बिजनेस चल रहा है। परिवर्तन क्या आया उस कथा के बाद हमारे जीवन में, सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन क्या लाया? साधु की पहचान ये है उसके संग में बैठो तो आपके जीवन में परिवर्तन आए। आज अगर आप जवान, जैसे ये आपके सामने बैठा ये भी जवान है, सूरत से आया हुआ हमारा प्रकाश भाई, वो धोती पहन के बैठा हुआ है, तो हमको लगता है कि हम में जरा आश्चर्य, हम नहीं, लेकिन दो पीढ़ी पीछे जाके इसके पिताजी और दादाजी धोती पहनते थे, नहीं पहनते थे, पहनते थे ना, हमारे दादा पिता पहनते थे ना, वो गौरव होना चाहिए ना कि हमारे पिता जैसे थे वैसे हम बनना चाह रहे हैं। जैसे वो रात कह रहे थे हमारे आए से कि हम अंग्रेज बनते जा रहे हैं पेंट पहन के, तो ये गौरव तो नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को छोड़ के जा रहे हैं? तो हमारे को अपनी संस्कृति के लिए क्यों नहीं इतना स्वाभिमान होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हमने ये वेशभूषा पहनी है इसका मतलब हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। हम अपने हमारे बच्चे हमको ऐसे देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमारा ये जो 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 धर्म की वेशभूषा है, मैं इसकी इस वेशभूषा के ऊपर कभी हमारा अनुभव बताता हूँ। क्या माता जी आप लोगों को क्या पहनते हैं? साड़ी पहनते हैं ना स्त्रियों की? अभी भी हम धन्यवाद करते हैं कि स्त्रियों ने अपनी वेशभूषा नहीं छोड़ी है, अभी तक नारी तो साड़ी पहनती है लेकिन हमने अपनी धोती को छोड़ दिया। और ये दोनों सनातन धर्म की बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ड्रेसें बनाई गई थी। धोती में जेब नहीं होता है और साड़ी में भी जेब नहीं होता है, देखा? दोनों में जेब नहीं होता है, ना धोती में जेब है ना साड़ी में जेब है। ये हमको रोज दिलाता, याद दिलाता रहेगा कि इस दुनिया से किसी के साथ कुछ नहीं जाएगा। दोनों में जेब नहीं है और अंत समय जो कपड़ा पहनाते हैं उसको कफन कहते हैं, उसमें भी जेब नहीं होता है, उसमें भी जेब नहीं हुआ करता। और जो पूजा करते हैं मंदिर के अंदर भगवान की, वो भी वस्त्र कभी भी नहीं छिला हुआ पहन के जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस दुनिया में हमको त्याग वृत्ति से जीना चाहिए। ये वेश हमारा, संस्कृति हमारी। अभी तो जिसके पैंट में 15-20 जेब है वो अच्छा पैंट है, ये तो ऐसा फैशन आया है कि ज्यादा जेब वाला पैंट चाहिए। ये पहले मजदूरों के लिए ज्यादा जेब वाले पैंट होते थे, किसी को यहाँ प्लास रखनी है कहाँ है, हथौड़ा रखना है किसी को, हम कहे के लिए वो पहन के बैठे, हमारे को जरूरत क्या है? जो चीज हमारे संस्कृति में नहीं है उसमें हमारे को गौरव क्यों होने लगा? ये चाहे गले में ऐसे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, यहाँ ऐसे फांसी डाल के भेजते हैं बच्चे को। अरे हजरत ईसा को फांसी पे चढ़ाया था, उनके धर्म की निशानी है उसको, वो ये दिखाते हैं कि जिसने हमको सही रास्ता बताया उसको हमने फांसी के ऊपर चढ़ाया, कोई अच्छी बात है क्या? जिसने हमको कहा कि तुम भगवान का नाम लो उसको हमने फांसी पे चढ़ाया, इसलिए हम फांसी का निशान अभी लेके घूमते हैं कि हम ऐसे अच्छे लोग हैं। तो ये लगाने की जरूरत क्या है बताइए ना, इसमें हमको गौरव क्यों लगता है? अरे इससे अच्छा बच्चे को रुमाल दो तो नाक तो साफ कर, इससे नाक भी साफ नहीं कर सकता, किसी काम की नहीं है, ऐसे गले में फांसी टांग के मतलब क्या? इसका नहीं, हमको अच्छा लगता है ये पहन के जाते। अरे राजा महाराजा जो बड़ी सुंदर धोती पहन के और पगड़ी बांध के जाते थे उनको लोग प्रणाम करते थे, अभी भी इस वेश में मैं चला जाऊंगा तो मंत्री उठ के मेरे इस नमस्कार करके पांव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये वेश उसके वेश से ज्यादा है कि नहीं? तो जो जो चीज महत्वपूर्ण है उसको हम छोड़ क्यों रहे? जो हमारी अपनी पहचान है उसको क्यों हम छोड़ना चाह रहे हैं? इसमें क्या बुराई है? अंग्रेज ने कह दिया ये अच्छी नहीं है इसलिए हमने छोड़ दी। ये जयपुर का महाराजा जब जहां से जा गया था, जब भारत में इंग्लैंड में बुलाया था तो उसने कहा था मैं तो पानी भी आपका नहीं पीऊंगा, गंगा जल पीऊंगा, और गंगा से गंगा जल दो बड़े चांदी के मटके भर के ले गया था। अभी भी जाके जयपुर के अंदर देखना, म्यूजियम के अंदर दो बड़े मटके हमारी साइज के बने हुए हैं, गंगा जल के भर के महाराज यहां से ले गया था कि गंगा जल ही पीऊंगा जब तक मैं वहां रहूंगा। जो एक महीना, जब डेढ़ महीने दो महीने रहे तो अपना गंगा जल ही पिया था। कितनी उसकी अपनी गौरव था संस्कृति के ऊपर, और अपने उस वेशभूषा में गया था वो। गांधी जी जब यहां से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था तो आज ही धोती पहन के गया था, लेकिन सबको हिला दिया था। धोती पहन के गया था गांधी यहां से जब गया था गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। तो अपनी संस्कृति को कैसे भी स्वाभिमान होना चाहिए ना हमारे को अपनी संस्कृति के, और भगवान का नमाला झोला हाथ में है तो इसमें गौरव होना चाहिए हमारे को। तो इसको हमने शर्म क्यों मान लिया? ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन में, हमारा जीवन में आध्यात्मिकता के अभाव से चरित्रहीनता आ रही है। चरित्र की आवश्यकता है। ये पुरानी कहावत अंग्रेजी की सबने सुनी हुई है, वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, धन गया तो कोई बात नहीं हाथ का मैल है फिर आ जाएगा, ऐसे बोलते थे पुराने जमाने में। वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, धन गया तो कोई बात नहीं, हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, अगर स्वस्थ चला गया तो कुछ हानि होगी। करेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट, चरित्र गया तो सब नाश हो गया। ये पुरानी शिक्षा हमको स्कूल में बचपन में पढ़ाते, चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, और अब चरित्र नहीं रहे तो नहीं रहे। धन हमारे पास होना चाहिए, चरित्र कितना, और चरित्र हमारे संस्कार बच्चों में नहीं है। क्यों? कितने बच्चे आपके घरों में आपको चरण छू के सुबह जाते हैं पढ़ने के लिए? नहीं जाते हैं ना। क्यों? आप थोड़ी एक पीढ़ी देखो, पुराने जमाने में आप घर से जाते थे पिताजी से आज्ञा लेके जाते थे कि नहीं? माता जी का चरण छू के जाते थे, कहीं जाते थे आते थे कि नहीं? तो अब क्यों नहीं कर रहे बच्चे? चरित्र क्यों खत्म हो गया? आप चाहते हो कि आपके बच्चे, आपको सबसे सुख ज्यादा माता पिता को तब मिलता है जब बच्चा चरण में नमस्कार करता है। आप देख लें, आपने जो पिता है उनको देख लो कि जब बच्चा नीचे प्रणाम करता है तो आपको कितना सुख मिलता है, और उस वक्त हृदय से निकलता है बेटा सुखी रहो। निकलता है कि नहीं निकलता है? आशीर्वाद निकलती है ना, और ये आशीर्वाद सुरक्षा का कवच हुआ करता था माता पिता की, जो बच्चों की रक्षा करती थी। अब ये बच्चों ने सुरक्षा का कवच उतार के वो हेलमेट वाला टोपा पहन के रखा है, उसको सुरक्षा मानते हैं। ये क्यों संस्कृति हमारी के अंदर से ये सदाचार चले गए, शिष्टाचार चले गए? हमको ये चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको इसके ऊपर कभी विचार करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर इन चीजों के न हो। और ये कैसे आएंगे? ये केवल आध्यात्मिकता से आएंगे, इसका और कोई मार्ग नहीं है। चरित्रता जिस पात्र में रुकती है उसका नाम आध्यात्मिकता है। मैं कहूं कि जल पिलाओ तो किसी लोटे में गिलास में देना पड़ेगा ना, तो पात्र चाहिए ना जल पीने के लिए। ऐसे चरित्र के लिए पात्र आध्यात्मिकता है। अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो चरित्र, ये तो आध्यात्मिकता में पुराने जमाने में पढ़ने के बाद बच्चे को यही कहते कि तुम्हारी माता पूजनीय है, तुम्हारा पिता पूजनीय है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये शिक्षा हुआ करती थी, अतिथि देवो भव। ये तो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, तो ये शिक्षा खत्म हो गई। कहां शिक्षा? ये अभी नर्सरी में जाने वाले बच्चे को ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता को जाके तुम प्रणाम करना? नहीं मिलती। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कहां गलत गए हैं, कहां हमने अपने जीवन की दिशा में थोड़ा सा गलत रास्ता, कहीं हमने एक डाइवर्जन गलत ले लिए। हमारा लक्ष्य हमारे आंखों से ओझल हो गया है और हम अपना हित नहीं समझ पा रहे, तो किसी तरीके से हमको वापस सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वज अपने कितना भी संकट से कि ये राजस्थान के अंदर लोग आके बसे क्यों थे। विशेष रूप से हमारे बुजुर्गों को हमने पूछा कि यहाँ राजस्थान से और अंदर डीप चले गए थे, रेत में जहां कोई आदमी नहीं पहुंचे, पानी नीचे कुएं से निकालते थे वो 200 फीट से नीचे से और खींच के निकालते थे, लेकिन वहां इतने कष्ट में क्यों रहे? केवल बरसात में वो एक 3 महीने कमाते थे, 9 महीने बैठ के हरी कथा करते थे, उस भोजन से इतना मिलता था 12 महीना सुख से खाते थे, क्यों यहां आए? बोला धर्म की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वहां उस वक्त जो शासन था 1200 साल तक जो मोहम्मदियन शासन था उसमें हमारे धर्म की सुरक्षा नहीं थी, तो हम तपस्या करके भी इन जगहों पे आकर रहे थे ताकि हम अपने धर्म को न छोड़ सके। कितनी बड़ा कष्ट देखा हमारे, तपस्या देखी, अकाल हुआ, यहां बरसात नहीं पड़ी, कभी किसी ने अपने पशु गाय को मार के खाया हुआ आपको इताज नहीं मिलेगा, पेड़ के तो छाल खाई होगी, पेड़ के छाल खाई होगी, लेकिन कभी पशु अपने को मार के नहीं खाया। इतनी बड़ी तपस्या की थी हमारे बुजुर्गों ने यहां रहकर, क्यों? धर्म की रक्षा के लिए, कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे। ये जीवन तो सदा के लिए रहने वाला नहीं है, लेकिन धर्म हमारा सदा के लिए रहने वाला है, हमारे साथ जाने वाला केवल धर्म है। संसार के अंदर से न कोई धन जाएगा, न गाड़ी जाएगी, न घर जाएगा, न मोटर जाएगी, न परिवार का कोई सदस्य भी साथ जाएगा, यह शरीर भी साथ नहीं जाएगा, केवल धर्म साथ जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करना जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। और धर्म क्या है? धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान ने दिया है। और भगवान ने धर्म कलयुग के लिए क्या दिया है? नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन कलयुग का युग धर्म है ना, युग धर्म परिवर्तन प्रचार करने के लिए साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर गली गली के अंदर भगवान के नाम का कीर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सरल है, बच्चा भी कर सकता है, माता भी कर सकती है, इसके लिए कोई पवित्रता अपवित्रता का भी प्रश्न नहीं है। और ये मंत्र कहाँ है? ये मंत्र कलिसंत्रण उपनिषद में है, जो कलयुग के लिए विशेष ब्रह्मा जी ने, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है, उसने नारद जी के प्रश्न पूछने के ऊपर कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, तब कहा कि ये 16 अक्षर का मंत्र। बोला इसके लिए कोई नेम? बोला कोई नेम नहीं है, कोई टेम नहीं है, कभी भी कहीं भी कोई भी जपेगा निश्चित रूप से, जैसे आग में अंगली बच्चा डालेगा तो भी जलेगी, स्त्री डालेगी तो भी जलेगी, अनपढ़ डालेगा तो भी जलेगी, प्रोफेसर डालेगा तो भी जलेगी, आग का धर्म है जलाना, और कोई भी हाथ डालेगा तो जलेगा। ऐसे भगवान का ये नाम कोई भी उच्चार करेगा भगवान की प्राप्ति उसकी होगी, कोई भी हो, कहीं का भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, कोई भी कर सकता है। और ये कलयुग का धर्म, और निश्चित रूप से ये कलयुग के लिए एक ही धर्म है जिसको सबको पालन करने का सिद्धांत शास्त्र ने बताया और ब्रह्मा बता रहा है जिसने सृष्टि की है। और भागवत के अंदर जब परीक्षित महाराज को कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग घोर ऐसा आने वाला है जहां लोग बहुत दुखी हो जाएंगे, कलयुग का बहुत 12वें स्कंद श्रीमद् भागवत में पूरे अध्याय के अंदर वर्णन है कि कलयुग के अंदर कैसी परिस्थितियां खराब होती जाएंगी लोगों के लिए, कोई कलयुग को रोकने का साधन नहीं है। भागवत शुरू कैसे होती है? भागवत शुरू ऐसे होती है कि 88,000 इस भारत वर्ष के ऋषि बैठ के ये चिंतन कर रहे थे कि कलयुग को कैसे रोका जाए, 88,000 ऋषि बैठ के ये चिंतन कर रहे थे कि लोगों को दुख से बचाने के लिए हम कलयुग के ऑन मार्क जो कलयुग तेजी से आगे बढ़ा है इसको रोकें कैसे। भागवत शुरू इसलिए हुई है कि कलयुग को आगे बढ़ने से रोका कैसे जाए, लेकिन कलयुग को कोई नहीं रोक सकता, कलयुग का समय है, कलयुग को रोकना संभव नहीं है। आंधी तूफान आए तो कोई रोक सकता है? बरसात पड़े तो कोई रोक सकता है? सरकार को ताकत है बरसात रोकने की? नहीं है ना। ऐसे कलयुग को भी कोई नहीं रोक सकता है। परीक्षित महाराज ने कलयुग को रोका था, उसमें शक्ति थी, भगवान की कृपा थी उसके ऊपर, लेकिन आजकल के राजा किसी में कलयुग को रोके? वो तो कलयुग का पुतला है, रोकेगा क्या? आजकल का जो राजा है वो कलयुग का ही पुतला है। कैसे कलयुग का पुतला है? 4 जगह दी थी कलयुग को रहने के लिए परीक्षित महाराज ने, सुरापान जहां शराब पिया जाता है, नशा किया जाता है, सुना जहां पशु हत्या होती है, कोसगर, और तीसरा स्थान दिया था जुआ जहां होती है, और चौथा स्थान दिया था जहां विभचार होता है, विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का संबंध होता है, 4 जगहों पर जाकर रहो। आज सरकार ने ये 4 परमिट दी हुई है कि नहीं दी हुई है? परमिट साफ शराब की दुकान को लिखते हैं, मांस के ऊपर डॉक्टर ठप्पा लेकर लगाता है गवर्नमेंट का, कैसीनो गवर्नमेंट के खुले हुए हैं, सारे सट्टा बाजार और ये सब जुआ है और कुछ भी नहीं है, और वे विचार सरेआम जो है ऑफिशियल चल रहा है। तो कलयुग के पुतला सरकार तो कोई नहीं रोक सकता कलयुग को, ऐसे जैसे बरसात को कोई नहीं रोक सकता है ऐसे कलयुग को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन भीगने से बचने के लिए तो हर एक आदमी 100 रुपये का छाता तो ले सकता है ना, बरसात को नहीं रोक सकते हैं छाता तो ले सकते हैं ना, तूफान आंधी को नहीं रोक सकते हैं एक चादर लेके अपने मुंह को तो छुपा सकते हैं ना, तो आंखों में तो धूल नहीं आएगी ना, ऐसे कलयुग को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन ये 15-20 रुपये की एक माला का छाता लेकर भगवान का नाम रोज जपेंगे तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। छाते के नीचे बैठा हुआ आदमी भीगेगा नहीं, बरसात आएगी, चादर ओढ़ा हुआ बैठा आदमी तूफान में आंखों में मिट्टी नहीं पड़ेगी। ऐसे जो भगवान का नाम का सुरक्षा का कवच जो पहन लेता है, ये छाता जो ओढ़ लेता है, कलयुग के प्रभाव से बच जाता है। कलयुग का एक ये बड़े से तब परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख हुआ कि कलयुग इतना भयानक आएगा तो मेरी प्रजा का उद्धार कैसे होगा। तब सुखदेव महाराज के मुख से ये नाम ये श्लोक निकला, कलेर दोषे निधे राजन, नदी कहते हैं समुद्र को, और एक कलयुग तो दोषों का सागर है। महाराज परीक्षित का आखिरी दिन था, सातवां दिन पूरा होने वाला था, दोषों का सागर है और मैं राजा हूं और मेरी जनता सागर को कैसे पार करेगी। कोई आदमी कितना भी अच्छा तैरने वाला हो, स्विमर हो, तो समुद्र को तो पार नहीं कर सकता है। तो इतना बड़ा समुद्र दोषों का है, कलयुग में पार कैसे होगा। परीक्षित महाराज अंत समय में दूसरों के दुख के कारण दुखी हुआ, अपने दुख से नहीं दुखी हुआ। सुखदेव महाराज ने परीक्षित के चेहरे को दुख में देखा तो सुखदेव महाराज के मुख से निकला, अस्ति एको महागुण, कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, अवगुणों का तो सागर है लेकिन एक बड़ा गुण। अब तो महाराज परीक्षित बहुत अधीर बोले, जल्दी बताइए, मैं राजा हूं, मैं अगर इसको अपना लूंगा तो प्रजा अपने आप इसको अपनाएगी। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदैवत्रो जनः, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग उनका अनुकरण करते हैं, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं साधारण उनका अनुकरण करते हैं, ये नियम बना हुआ है। तो पहले हमारे श्रेष्ठ लोग कौन होते थे, ऋषि होते थे, ऋषि श्रेष्ठ होते थे, हम उसका आचरण करते थे, घर के अंदर सत्संग रखते थे, भजन करते थे। फिर एक समय आया हमारे श्रेष्ठ लोग, हमने वीर पुरुषों को माना जो देश के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी उनको हमने अपना श्रेष्ठ पुरुष माना, कभी महाराणा प्रताप सिंह को हमने चित्र घर में लगा के रखा, कभी छत्रपति शिवाजी का चित्र लगा के रखा, पहले ऋषियों के लगाया करते थे। तो हमारा ये श्रेष्ठ लोग हमारे लिए ये हुए थे। अब हमारे श्रेष्ठ लोग कौन से हैं, जरा जरा विचार करके देखो, अपने घर में बच्चों ने किसके फोटो लगाए हैं, सिनेमा के फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस के, या क्रिकेट के खिलाड़ियों के, या वो भूत बाक्सर होते हैं उनके, यही है ना घर में। तो हम हमारा आचरण कहां से सुधरेगा, हमने रखा किसको है। अच्छा लगता है एक्टर और एक्ट्रेस, लेकिन उनको घर में कोई लाने को तैयार नहीं, क्योंकि चरित्र उनमें किसी का अच्छा नहीं होता, जो खैर देखने के अच्छे होते हैं लेकिन घर में कोई नहीं रखना चाहते, उसको हमने अपना आइडल बना के रखा है। जो ऋषियों को जो आइडल था, जिनका आइडल ऋषि मुनि हुआ करते थे, साधु संत हुआ करते थे, वीर पुरुष हुआ करते थे, उनका इतना चरित्र नीचे आया है कि अब वो खिलाड़ी उनका आइडल हुए हैं, और अभिनेता और अभिनेत्रियां उनका जीवन का जो है वो लक्ष्य बने हुए। तो कोई हम आगे थोड़ी बढ़े, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझने की बहुत आवश्यकता है, इस चीज को समझने की। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य पुराने जमाने में इन ऋषियों की शिक्षाओं के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हुआ करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या बात कर रहे थे, ये आ गया बीच में, कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए एक ही माध्यम है। तो अस्ति एको महागुण, एक महागुण है कलयुग को रोक, कलयुग है। तो महाराज परिचित जल्दी बताओ। तब सुखदेव महाराज के मुख से ये शब्द निकले हैं भागवत में, कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, ये भागवत का श्लोक है। सुखदेव महाराज ने कहा है एक महागुण क्या है, कीर्तन कृष्ण से। अब सुखदेव गोस्वामी की जीभा के ऊपर शुद्ध सरस्वती ने कहा कृष्ण कीर्तन, उस वक्त भगवान कीर्तन भी कह सकते थे, फिर जिसको जो मर्जी पड़े उसको भगवान बना के कीर्तन कर सकता था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने सीधा सा ऐसे रास्ता बोला कृष्ण कीर्तन और कोई कीर्तन नहीं। ये भागवत का शब्द है, कीर्तन कृष्ण से। भगवत प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका में 65 में, तो उन लोगों ने कहा आप क्या बनाना चाहते संस्था, बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भाग। बोला कृष्ण क्यों, भगवान लिखो। बोला भगवान है कौन बताओ तो। अब भगवान किसको कहते हो तो किसी को मालूम नहीं, भगवान किसको कहते हैं। भगवान वेग टर्म है, इतना वेग टर्म है उसका कोई किसी को ही भगवान कह देता है आदमी। आजकल तो भारत का इतना दुर्भाग्य है कि हर गली गली में भगवान पैदा हो रहा है। नोकिया वाला मोबाइल का नया मॉडल बनाता है और भारत वाले एक नया भगवान बनाते हैं, इतना बड़ा अधर्म यहां चल रहा है। लेकिन यहां जो शब्द भागवत कह रही है सुखदेव महाराज के मुख से निकला है ये कीर्तन कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन, मुक्त संग संसार के सारे तुम्हारे जो बंधन है उनसे तुम्हें छुड़ा देगा, दुख ताप संताप से मुक्त कर देगा। फिर क्या करेगा, परम ब्रजेत, परम पद की प्राप्त कराएगा। परम पद क्या है, ब्रज भगवान का धाम है, वहां तक पहुंचा देगा केवल ये भगवान के नाम का कीर्तन। तो ये जो हरे कृष्ण नाम कीर्तन आप उच्चारण कर रहे हैं ये सारे मंत्रों का महामंत्र है, सारे शास्त्रों का सार है, ये साक्षात भगवान है जो बड़े प्रेम से आपकी जीभा के ऊपर नृत्य करने को तैयार है। केवल इसको उच्चारण करने के लिए कलयुग के अंदर किसी आदमी को भगवान का नाम जपाना इतना मुश्किल है जितना घोड़े को दवाई देना। घोड़े को दवाई देने के लिए 6 आदमी चाहिए, 4 पांव पकड़ते हैं, 5वां मुंह खोलता है, 6ठा दवाई डालता है। ऐसे कलयुग में किसी को कहें भगवान का नाम लो हरे कृष्णा, 6 आदमी चाहिए। इसलिए ये देखिए ये 5 आदमी साथ आए एक आदमी से, और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ये साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का युगल विग्रह है। इनके साथ यहाँ खड़े हैं नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, ये अद्वैत आचार्य है, ये विष्णु है, और इस तरफ है गदाधर पंडित, ये राधा रानी भगवान की शक्ति है। शक्ति भगवान के लेफ्ट साइड में होती है, वाम भाग में होती है। उनसे लेफ्ट साइड में श्रीवास आचार्य नारद है जो भगवान का प्रचार, 5 कठे होके पंच तत्व भगवान का नाम देने के लिए कलयुग में आए, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम उच्चारण करना बहुत मुश्किल है, अति मुश्किल है। तो इसलिए संकीर्तन का मतलब है साथ मिलो, 5, 7, 8, 10 लोग कीर्तन करेंगे तब कोई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए घर के अंदर परिवार के सब लोग बैठ के कीर्तन किया करो, अकेले से नहीं होगा, अकेला जप होता है लेकिन कीर्तन साथ होता है। तो कीर्तन करना जीवन का लक्ष्य है, हमारे कलयुग का धर्म है, इसको करना चाहिए। ये अपना भजन जो रात इसको पूरा करना था कि भगवान श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, वो भगवान है। ये भी कहां से हमने लिया, भागवत से लिया है, जहां पहले स्कंद श्रीमद् भागवत के 3रे अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी को ऐसे लगा कि मैं ठीक नहीं कह गया हूं, तब एक श्लोक उन्होंने पुनः बोला एते चांस कराह पुंश। अभी जो आपको बताया मैंने अवतार, ये सब भगवान के विस्तार है या विस्तारों के विस्तार है, कला और विस्तार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब उससे निकले हुए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो यहां जो ये शब्द भगवान लिया हुआ है, कृष्ण जिनका नाम है, ये श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद से लिया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान का मतलब साक्षात कौन सा भगवान स्वयं है, भागवत के अनुसार गोकुल जिनका धाम है, पूरी एड्रेस है उसकी स्वयं भगवान की। काम क्या करता है, गोपाल गैया चराता है वृंदावन के अंदर, स्वयं भगवान गोप वेश है, हाथ में लकुटी ली हुई है, गैया चराने जा रहा है। और आयु कितनी है, 9-10 साल से बड़ी नहीं, 11 साल से ज्यादा भगवान वृंदावन में रहे ही नहीं, जो भी लीलाएं वृंदावन की है वो भगवान के 11 साल के अंदर की है, रासलीला 9 साल की आयु की है। तो ये तो बहुत बड़े सिद्धांत है समझने के लिए। इसके बाद वाली पंक्ति, राजा जिनकी जाया है अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। अब ये राधा और कृष्ण दोनों का नाम आया। अभी ये राधा कहां से प्रकट हुई है? ये भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण अपने आनंद लेने की इच्छा किया और उनके ही वाम भाग से गोलोक में सुंदर सी मूर्ति सामने प्रकट हो गई और भगवान ने उसको देखा और वो भाग के एक फूल उठा के आके भगवान के चरणों में अर्पण किया, उसका नाम हो गया राधा। तो राधा कहां से प्रकट हुई? कृष्ण के अंदर से, कृष्ण के वाम भाग से, लेफ्ट साइड से। तब से अभी भी हमारी परंपरा है, स्त्री पुरुष विवाह होता है तो वाम भाग में स्त्री को बिठाते हैं, पूज्य वाम भाग स्थित होती है स्त्री। उसकी उत्पत्ति वाम भाग से हुई है। माया क्या अद्भुत है? माया अद्भुत ही है कि सांवला कृष्ण है, उसके अंदर से राधा निकली है, वो गोरी है। ये अद्भुत माया है उसकी, उसी से निकली है लेकिन वो गोरी है। कैसी गोरी है? तम तक अंचन गोरंगी, पिघले हुए सोने जैसी गोरी है। और सांवला कैसे, कृष्ण कैसा है? सांवला घनश्याम लिखा है नीचे, ऐसे घनश्याम को। घन किसको कहते हैं? बादल को। और बरसात का जलधर जो बादल हुआ है, पानी से भरा हुआ, उसको घन कहते हैं। श्री कृष्ण का रंग कैसा है? घनश्याम। और अद्भुत माया क्या है कि उनसे निकली है राजा, वो गोरी है। ये अद्भुत उनकी माया है। अद्भुत जिनकी माया है, अद्भुत माया योग माया है। ये राधा रानी क्या है? स्त्री नहीं है, ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। इसको भगवान की शक्ति तीन प्रकार की होती है। अनेक शक्तियों को तीन प्रकार में शास्त्र ने कहा है। एक भगवान की शक्ति जो इस भौतिक जगत का संचालन चलाती है, उसको कहते हैं बाहर अंग शक्ति। उसका स्वरूप है दुर्गा, वो इस संसार की देखभाल करती है, दुर्गा। एक भगवान की शक्ति है अंतरंग, जो भगवान के गोलोक वैकुंठ धाम का संचालन करती, उसका स्वरूप है राधा। और एक भगवान की शक्ति है हम जीव आत्मा है, जो बीच में है दोनों के, इसलिए हमको कहते हैं तटस्थ शक्ति, किनारे के ऊपर खड़े हैं। हमारे को च्वाइस है कि हम बाहर अंग शक्ति की गोद में जाएं और संसार के अंदर जन्म मृत्यु के सागर में गोते खाएं, या अंतरंग शक्ति के शरण में जाएं और भगवान के चरणों का अमृत पान करें। ये हमारे ऊपर है, हम बीच में खड़े हैं। एक तरफ मासी है, एक तरफ माँ है, दोनों गोद में लेती हैं, लेकिन माँ और मासी में अंतर कितना है? तो अंतरंग शक्ति जो भगवान की है, उसका स्वरूप श्री राधा है, आह्लादिनी शक्ति। तो ये राधा भगवान की शक्ति है, अद्भुत माया है। माया या योग माया का इसका अर्थ है, योग माया। और योग माया में भी भगवान की आह्लादिनी शक्ति का संकेत है। और इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, असल में इस संसार के अंदर बहुत कम लोग होते हैं जो यति या व्रत होते हैं, लेकिन साधारण लोग ग्रस्त में रहते हैं। तो ग्रस्त लोग जो साधारण रहते हैं, उनको जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे उनके जीवन की शैली होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक प्रश्न इसमें पूछा है युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से, और कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न भागवत में है, ग्रस्त एताम पदवीं विधीना येन च अंजसा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हम तो ग्रस्ती हैं और ये हमने ग्रस्त का पद स्वीकार किया है, अथवा हमने जीवन में ग्रस्त आश्रम को स्वीकार किया है। अब अंजसा, अंजसा का मतलब है, अंजन किसको कहते हैं? आंखों में डालने वाले, मरम को अंजन बोलते हैं, सुरमे को बोलते हैं। इसका मतलब इतना आसान रास्ता बताओ, जैसे आंखों में डालने से आंख को खराब नहीं करे। अंजसा का मतलब सरल से सरल, अंजन का मतलब आंख में लगाने से जो खटके नहीं, उसको अंजन बोलते हैं। तो हम ग्रस्ती बहुत कठिन तप नहीं कर सकते, घर परिवार छोड़ के जा सकते नहीं है, तपस्या कर सकते नहीं है, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने भी हम में हिम्मत नहीं है, अब हमको ऐसा कोई रास्ता बताइए जो बहुत सरल हो। और फिर अपने को क्या कहते हैं, ग्रह मूढ़ धीहि। अब युधिष्ठिर महाराज हम सब की जगह पे कह रहे हैं कि हम ग्रस्त के अंदर मूढ़ धी, मूढ़ कहते मूर्ख को, धी कहते बुद्धि, हमारी बुद्धि बस केवल घर से ज्यादा सोचती है, घर दुकान से, इतनी मूर्ख हो गई है छोटे दायरे में। ऐसे आपको प्राप्त करने का सरल रास्ता क्या है वो बताए। इतना सुंदर ग्रस्त धर्म का जितना निरूपण श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 14वें अध्याय में इतना और कहीं नहीं। तो रात को हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके बाद भगवान ने बाल लीलाएं जो की है, लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, इससे संकेत क्या मिला, बचपन में बाप भगवान की लीलाओं का वर्णन है, लूट लूट दधि माखन खायो। तो घर में दधि माखन होगा तो लूट लूट खाएगा ना, अब दधि माखन ही नहीं है तो लूट लूट क्या खाएगा। अभी जो बिस्कुट है एक दूसरे के ऊपर फेंको तो फेंको, या वो टोस है कि ब्रेड है, लूट लूट ब्रेड खाया है तो नहीं लिखा है, या लूट लूट दधि माखन खाया। तो रात को भगवान के दधि माखन की लीलाओं का भी थोड़ा वर्णन करेंगे। फिर किसी ने पूछा क्या क्या दही मक्खन खाया, कोई काम भी किया कि बस ऐसे घूमता रहा। बोला नहीं, काम बड़ा किया। बोलो काम क्या किया, द्रुपद सुता की लाज बचाया, पांच पांडवों की पत्नी जिस जैसा कोई वीर धरती के ऊपर हुआ नहीं है, अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं था, भीम जैसा कोई गदाधर नहीं था, और युधिष्ठिर जैसा कोई भाला चलाने वाला नहीं था, नकुल सहदेव खड़ग युद्ध के प्रवीण थे, और उन पांच पांच महायोद्धाओं की पत्नी को रक्षा करने वाला कोई नहीं था, तब उसकी लाज बजाई थी। एक राजा राजरानी की द्रौपदी थी, पांच पांडवों की पटरानी, उसकी लाज बचाई थी। बोला वो तो अपने भक्त थे, उसकी बचाई थी, मानव की बचाई थी, लेकिन भगवान है तो भगवान तो सबका होता है, कि इंसान को पशु का भी। तब ना आप पशु की बात करते हैं तो गज को ग्रह से फंद छुड़ाए। वो एक हाथी था, बड़ा एक भक्त था इंद्रद्युम्न महाराज दक्षिण भारत का, अगस्त मुनि का अपराध करने से उसको हाथी की जोनी प्राप्त हुई, लेकिन भगवान का किया हुआ तप हाथी की जोनी में भी उसको याद रहा, और उसके मुख से जैसे हरि का नाम निकला गोविंद का, भगवान ने उसका भी उद्धार किया, गज को ग्रह से फंद छुड़ाए। ऐसी कृपा निधान को बारंबार। अब क्या, अब कहां मिलेगा, तब ये आखिरी पंक्ति है, कुरुक्षेत्र को युद्ध रचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। गीता में आज मिलेगा, कुछ ऐसा करके जाओ इस दुनिया में कि दुनिया आपको याद करे। भगवान गीता छोड़ के गए, आज हम उसको याद कर रहे हैं। आप अपने जीवन में क्या करके जाओगे कि दुनिया में सदा के लिए याद रहोगे, तो इनके ऊपर शाम को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
दोपहर को 3 से 4 मोदी क्लास दूसरे मोड में है, सब लोग पहुंचा के आगे बताए, और शाम को कैसे आए यही कथा रहेगी, यहीं पे सब लोग आए। समय से सुनो,
हरे कृष्ण। शाम को प्रश्न है तो लिख के आना, अभी तो आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया। हरे कृष्ण।